एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
स्वागत।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो शायद हमारे सोचने का तरीका बदल दे, मतलब करियर को लेकर, सीखने को लेकर, यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश को लेकर भी।
हाँ बिल्कुल।
किताब है डेविड एप्स्टीन की रेंज, व्हाई जनरलिस्ट्स ट्रायम्फ इन अ स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड। और ये एक बड़ा सवाल उठाती है, क्या कामयाब होने के लिए हमेशा एक ही चीज में माहिर होना जरूरी है, या आज की दुनिया में कहानी कुछ और है?
बिल्कुल सही सवाल है, और आज के जमाने में तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है ना। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, इतनी अनिश्चित है। ये किताब असल में इसी बात पर जोर देती है कि जिसे हम अक्सर यू नो थोड़ा कम आंकते हैं, मतलब अलग अलग फील्ड्स का अनुभव, जिसे एप्स्टीन रेंज कहते हैं, शायद वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
अच्छा।
हाँ, ये उस आम सोच को सीधी चुनौती देती है कि भाई बचपन से ही एक चीज पकड़ लो और उस पर हजारों घंटे लगा दो, वो 10,000 घंटे वाला नियम जो मशहूर है। ये कहती है कि शायद ये रास्ता हर किसी के लिए या हर सिचुएशन में सही ना हो।
और ये जो दिलचस्प आइडिया है, इसके पीछे जो लेखक हैं डेविड एप्स्टीन, वो भी काफी दिलचस्प हैं। मतलब वो कोई टिपिकल एकेडमिक रिसर्चर या बिजनेस गुरु टाइप नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो एक खोजी पत्रकार हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, प्रोपब्लिका जैसी जगहों के लिए लिखा है, और साइंस, मेडिसिन, स्पोर्ट्स, मतलब काफी अलग अलग विषयों पर गहराई से लिखा है।
जी हाँ, उनकी पिछली किताब थी द स्पोर्ट्स जीन, वो भी काफी चली थी। उसमें उन्होंने ये देखा था कि खिलाड़ियों की जो प्रतिभा होती है उसमें नेचर बनाम नर्चर, मतलब पैदाइशी गुण और ट्रेनिंग, इनका क्या रोल है। उनका जो ये पत्रकारिता वाला बैकग्राउंड है ना, जहाँ वो सवालों की तह तक जाते हैं, और उनका खुद का भी साइंस से लेकर स्पोर्ट्स तक इतना वाइड रेंज है, ये उन्हें इस विषय पर लिखने के लिए एकदम सही बनाता है।
सही बात है।
वो बनी बनाई धारणाओं पर सवाल उठाते हैं और अलग अलग फील्ड्स के रिसर्च को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं जो शायद कोई एक ही विषय का एक्सपर्ट ना देख पाए।
तो फिर ये किताब रेंज आखिर है किस बारे में, मोटा मोटा क्या कहती है?
बुनियादी तौर पर ये किताब हमें सीखने, एक्सपर्ट बनने और कामयाब होने के तरीकों को एक नए नजरिए से देखने को कहती है। इसकी शुरुआत ही होती है खेल जगत के दो बड़े नामों से, टाइगर वुड्स और रॉजर फेडरर।
हाँ, ये उदाहरण तो बहुत फेमस है।
बिल्कुल। टाइगर वुड्स, जिन्हें गोल्फ स्टिक शायद तब मिली जब वो ठीक से चलना भी नहीं सीखे थे, बचपन से फोकस सिर्फ गोल्फ, एकदम पक्के स्पेशलिस्ट।
और दूसरी तरफ रॉजर फेडरर।
हाँ, फेडरर ने तो टीनेज तक कई सारे खेल खेले, स्कीइंग, सॉकर, बास्केटबॉल, पता नहीं क्या क्या। टेनिस पर सीरियसली फोकस तो काफी बाद में किया, मतलब वो एक तरह से जनरलिस्ट रास्ते पर चले।
तो एप्स्टीन पूछते हैं कि किसका रास्ता ज्यादा कामयाब रहा और क्यों।
हाँ, और किताब का तर्क ये है कि टाइगर वुड्स वाला जो मॉडल है ना, मतलब बहुत जल्दी स्पेशलाइज करने पर जोर देना, वो सिर्फ कुछ खास तरह के माहौल में ही ज्यादा काम करता है। इन माहौल को एप्स्टीन, एक मनोवैज्ञानिक है रॉबिन होगार्थ, उनके काम के आधार पर काइंड माहौल कहते हैं, मतलब सरल या नियमित माहौल।
अच्छा, काइंड माहौल।
जैसे कि मतलब क्या हुआ इसका?
जैसे शतरंज हो गया या गोल्फ, यहाँ नियम बिल्कुल साफ हैं, पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं, और आपको तुरंत फीडबैक मिलता है, आपका शॉट अच्छा था या नहीं, चाल सही थी या गलत।
समझ गया।
ऐसे माहौल में आप प्रैक्टिस करके पैटर्न रटकर बेहतर हो सकते हैं।
लेकिन असल दुनिया की चुनौतियाँ, बिजनेस चलाना, कोई नई खोज करना।
हाँ, एप्स्टीन कहते हैं कि ज्यादातर असल जिंदगी की जो चुनौतियां हैं वो विकेड माहौल में होती हैं, मतलब जटिल या अनिश्चित।
और विकेड माहौल की क्या पहचान है, ये काइंड से अलग कैसे है? देखिए, विकेड माहौल में नियम अक्सर साफ नहीं होते या बदलते रहते हैं, जानकारी पूरी नहीं होती, पैटर्न शायद ही कभी ठीक वैसे ही दोहराते हैं, और फीडबैक या तो मिलता ही नहीं, या बहुत देर से मिलता है, या फिर उसका मतलब समझना मुश्किल होता है।
ये तो ज्यादातर असली दुनिया जैसा लग रहा है।
बिल्कुल। और एप्स्टीन का तर्क यही है कि ऐसे विकेट माहौल में रॉजर फेडरर जैसा रेंज, मतलब अलग अलग अनुभवों से सीखा हुआ ज्ञान, ज्यादा काम आता है। किताब भरी पड़ी है उदाहरणों से, संगीत, साइंस, बिजनेस, आर्ट, यहां तक कि कॉमिक बुक बनाने वाले, ये सब दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग फील्ड से सीखने की क्षमता ही असल में क्रिएटिविटी और मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग की चाबी है।
किताब में एक और बड़ा आइडिया है सैम्पलिंग पीरियड का, इसका क्या मतलब है?
सैम्पलिंग पीरियड मतलब करियर या जीवन के शुरुआती दौर में कई अलग अलग चीजें आजमाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे फेडरर ने अलग अलग खेल ट्राई किए। एप्स्टीन जोर देकर कहते हैं कि ये कोई भटकना या टाइम वेस्ट करना नहीं है।
हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं।
बिल्कुल, लेकिन एप्स्टीन कहते हैं कि ये खुद को और अपनी काबिलियत को जानने का एक बहुत जरूरी दौर है। किताब में एक लाइन है, हम सिद्धांत में नहीं बल्कि अभ्यास में सीखते हैं कि हम कौन हैं।
मतलब करके ही पता चलता है।
एग्जैक्टली, सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि चीजें करने से हम खुद को पहचानते हैं।
और ये सैम्पलिंग पीरियड कैसे जुड़ा है मैच क्वालिटी से, ये क्या चीज है?
मैच क्वालिटी का मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी रुचियां, आपकी क्षमताएं, इनका आपके चुने हुए काम या फील्ड के साथ कितना अच्छा तालमेल है, कितना मैच है।
अच्छा,
तो सैम्पलिंग पीरियड आपको यही मैच क्वालिटी ढूंढने में मदद करता है। ये सिर्फ पैशन ढूंढना नहीं है बल्कि अनुभव से ये समझना है कि आप किस काम के लिए सबसे सही हैं, कौन सी चीज आपको सच में एंगेज करती है।
और अगर जल्दी स्पेशलाइज कर लिया
तो रिस्क ये रहता है कि आप शायद कोई ऐसी चीज चुन लें जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए सही ना हो, फिर आप या तो फंसे हुए महसूस करेंगे या बोर हो जाएंगे।
ये तो हमारे समाज की उस सोच पसीदा सवाल है जहाँ बच्चों पर, युवाओं पर कितना दबाव होता है कि जल्दी से जल्दी अपना रास्ता चुन लो।
बिल्कुल, किताब तो यही कह रही है कि शायद थोड़ा रुकना, थोड़ा एक्सप्लोर करना ज्यादा बेहतर हो सकता है लंबी दौड़ में।
और यहीं पर वो काइंड और विकेट दुनिया वाली बात फिर से आ जाती है, है ना?
हाँ बिल्कुल, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अक्सर हमें काइंड माहौल के लिए तैयार करता है। सवालों के तय जवाब होते हैं, नियम साफ होते हैं।
हाँ सही है,
लेकिन असल दुनिया ज्यादातर विकेड है। यहाँ रटे रटाए जवाब काम नहीं आते, यहाँ जरूरत पड़ती है अलग अलग तरह के ज्ञान को जोड़ने की, यू नो, डॉट्स कनेक्ट करने की।
और सीखने के तरीकों के बारे में भी किताब कुछ कहती है? हम तो अक्सर सोचते हैं कि जो चीज आसानी से जल्दी से सीख ली जाए वही बेस्ट है।
हाँ, और किताब इस सोच को भी पलट देती है। एपिस्टीन बात करते हैं डिजायरेबल डिफिकल्टीज की।
डिजायरेबल डिफिकल्टीज मतलब वांछनीय कठिनाइयां, ये क्या मतलब हुआ?
जो शुरू में धीमे लगते हैं ज्यादा मेहनत वाले लगते हैं, जैसे एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ने के बजाय अलग अलग टॉपिक्स को मिक्स करके पढ़ना, जिसे इंटरलीविंग कहते हैं।
अच्छा।
या फिर नोट्स को सिर्फ दोबारा पढ़ने की जगह खुद से सवाल पूछकर याद करने की कोशिश करना, रिट्रीवल प्रैक्टिस।
हाँ, ये मुश्किल लगता है।
लगता है शुरू में प्रगति धीमी दिखती है, लेकिन एप्स्टीन कहते हैं कि इससे जो सीख मिलती है वो ज्यादा गहरी होती है, ज्यादा टिकाऊ होते हैं, और सबसे जरूरी, ज्यादा लचीली होती है।
लचीली कैसे?
लचीली मतलब ऐसी सीख जिसे आप नई अनजानी परिस्थितियों में भी इस्तेमाल कर सके। जो ज्ञान आसानी से रट लिया जाता है वो अक्सर उसी कॉन्टेक्स्ट में काम आता है जिसमें उसे सीखा गया था। लेकिन विकेट दुनिया में तो हर सिचुएशन नहीं हो सकती है, तो वहां इसी लचीले ज्ञान की जरूरत पड़ती है। जैसा किताब कहती है, सबसे प्रभावी सीखने वाले वांछनीय कठिनाइयों में लगे रहते हैं, वो ज्यादा गहराई से और स्थायी रूप से सीख रहे होते हैं।
ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। और किताब में एनालॉजी मतलब सादृश्य या समानता से सोचने की भी बात है।
ये क्या फंडा है? हाँ, एनालॉजिकल थिंकिंग, ये तो जर्नलिस्ट की एक तरह की सुपर पावर है।
सुपर पावर?
हाँ, मतलब दो बिल्कुल अलग दिखने वाली चीजों या प्रॉब्लम के बीच में एक गहरा स्ट्रक्चरल कनेक्शन देख पाने की क्षमता। किताब में योहानिस केपलर का जबरदस्त उदाहरण है। खगोल शास्त्री थे, वो सदियों पुरानी पहेली सुलझाने में लगे थे, ग्रह कैसे घूमते हैं।
हाँ, ग्रहों की गति।
उन्हें सफलता तब मिली जब उन्होंने ग्रहों की गति को समझने के लिए बिल्कुल अलग फील्ड से आइडिया उधार लिए। रोशनी कैसे फैलती है, चुंबकत्व कैसे काम करता है, यहाँ तक कि संगीत के सिद्धांत। उन्होंने सोचा, जैसे सूरज से रोशनी या कोई ताकत निकलती है, शायद वैसी ही कोई शक्ति ग्रहों को उनकी ऑर्बिट में रखती है। ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सोच थी।
वाह, मतलब बड़े क्रांतिकारी आइडिया अक्सर अपने ही दायरे में और गहरा खोदने से नहीं आते।
बिल्कुल, बल्कि बाहर से आते हैं, असंबंधित लगने वाले फील्ड से आइडिया लाने से।
तो ये आउटसाइडर एडवांटेज वाली बात हो गई।
एग्जैक्टली, कई बार किसी फील्ड की कोई बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम वो लोग सुलझा लेते हैं जिन्हें उस फील्ड का बहुत गहरा पारंपरिक ज्ञान नहीं होता, वो ताजे नजरिए से देख पाते हैं। किताब में निंटेंडो के गुण पे योकोई का भी किस्सा है।
हाँ, गेम बॉय वाले।
वही, उन्होंने गेम बॉय बनाने के लिए कोई एकदम नई हाईफाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की, बल्कि उन्होंने पुरानी, सस्ती, जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर चुके थे, विदर्ड टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को लिया और उसे इतने क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल किया कि दुनिया भर में हिट हो गया।
कमाल है।
विशेषज्ञता कई बार हमें एक ही ढर्रे पर सोचने पर मजबूर कर देती है, जिसे कॉग्निटिव एंट्रेंचमेंट कहते हैं। हम नए रास्ते देख ही नहीं पाते।
आजकल ग्रिट की बहुत बात होती है, मतलब दृढ़ता, लगे रहना। क्या ये किताब उसे गलत मानती है?
नहीं, गलत नहीं मानती, लेकिन एक बैलेंस की बात करती है। एप्स्टीन कहते हैं कि टिके रहना जरूरी है, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कब किसी चीज को छोड़ देना चाहिए।
अच्छा, छोड़ देना।
हाँ, अगर कोई रास्ता या प्रोजेक्ट आपके लिए सही नहीं बैठ रहा, याद है मैच क्वालिटी, तो उसे छोड़ना फेलियर नहीं है, वो एक समझदारी भरा स्ट्रेटेजिक फैसला हो सकता है। कामयाब लोग अक्सर सही टाइम पर रास्ता बदलना जानते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेलियर से सीखते हैं और फिर अपनी दिशा बदलते हैं। सिर्फ आंख बंद करके टिके रहना हमेशा सही नहीं होता।
ये भी सोचने वाली बात है। और विशेषज्ञों की भविष्यवाणियों के बारे में क्या, उन पर कितना भरोसा करें?
इस पर किताब फिलिप टिटलॉक के बहुत फेमस रिसर्च का हवाला देती है।
हाँ, मैंने सुना है उनके काम के बारे में।
टिटलॉक ने पाया कि जो जटिल अनिश्चित मामले होते हैं ना, मतलब विकिड माहौल, उनमें वो एक्सपर्ट्स जो बहुत संकीर्ण सोचते हैं, जिनका बस एक ही बड़ा आइडिया होता है जिसे वो हर जगह फिट करने की कोशिश करते हैं,
जिन्हें वो हेजहॉग कहते हैं, कांटेदार चूहे।
हाँ, वही, मजाक में। वो अक्सर उन लोगों से खराब भविष्यवाणी करते हैं जो कई अलग अलग फील्ड से आइडिया लेते हैं, अलग अलग नजरियों को मिलाते हैं और सिचुएशन के हिसाब से सोचते हैं,
जिन्हें वो फॉक्स यानी लोमड़ी कहते हैं।
बिल्कुल, फॉक्स यानी कि जनरलिस्ट, अनिश्चितता को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं।
और वो जंगल की आग वाला एक उदाहरण भी था शायद, मैन गल्च फायर, वो क्या था?
हाँ, वो 1949 की एक बहुत दुखद घटना है। मैन गल्च में, वहाँ जंगल में आग बुझाने वाले एक्सपर्ट फायर फाइटर्स का एक ग्रुप तेजी से फैलती आग में घिर गया। उनके लीडर ने समझ लिया कि बचना मुश्किल है, उन्होंने चिल्लाकर सबको ऑर्डर दिया कि अपने भारी औजार, कुल्हाड़ी, आरी वगैरह फेंक दो और भागो। लेकिन ज्यादातर फायर फाइटर्स ऐसा कर नहीं पाए। वो औजार उनकी पहचान थे, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा थे, उनकी एक्सपर्टाइज थे, वो उन्हें छोड़ ही नहीं सके और उनमें से कई मारे गए।
ये तो बहुत दुखद है।
हाँ, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे हम अपने जाने पहचाने तरीकों, अपने टूल्स में इतने फंस जाते हैं, इसे आइंस्टलुंग इफेक्ट कहते हैं, कि बदलती हुई खतरनाक सिचुएशन में भी हम ढल नहीं पाते।
बाप रे, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे लिए तो पहली और सबसे बड़ी बात यही है कि आज की जो ये जटिल विकेट दुनिया है, इसमें सिर्फ एक चीज का गहरा ज्ञान होना ही काफी नहीं है, बल्कि वो जो रेंज है, मतलब व्यापक अनुभव, वो बहुत कीमती है।
हाँ, ये बिल्कुल सही है। और दूसरी बात मेरे ख्याल से ये है कि खुद को और अपनी सही जगह, वो मैच क्वालिटी, उसे खोजने के लिए शुरुआत में एक्सपेरिमेंट करना, अलग अलग चीजें आजमाना यानी सैम्पलिंग करना बहुत जरूरी है। भले ये रास्ता थोड़ा धीमा लगे या घुमावदार लगे, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये खुद में एक इन्वेस्टमेंट है।
और तीसरी बात ये कि नए क्रिएटिव आइडियाज और समाधान अक्सर अलग अलग फील्ड्स के ज्ञान को जोड़ने से आते हैं, वो एनालॉजी वाली बात। हाँ। और बाहरी नजरिए से, आउटसाइडर एडवांटेज से। जैसा किताब में कहा गया है, हमारी सबसे बड़ी ताकत संकीर्ण विशेषज्ञता के ठीक विपरीत है, यह व्यापक रूप से एकीकृत करने की क्षमता है। मतलब अलग अलग ज्ञान को जोड़ पाना ही असली ताकत है।
बिल्कुल। और चौथी बात जो मुझे लगता है बहुत अहम है, कि सिर्फ टिके रहना या ग्रिट दिखाना ही सब कुछ नहीं है। कब रास्ता बदलना है, कब किसी चीज को छोड़ना बेहतर है, ये जानना और बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालना, ये अनुकूलन क्षमता, अडैप्टेबिलिटी, शायद ज्यादा जरूरी है। और ये अनुकूलन क्षमता रेंज से ही आती है। और ये सारी बातें आप सोचिए भारत जैसे देश में कितनी लागू होती हैं, जहां करियर चुनने का इतना प्रेशर होता है, एजुकेशन सिस्टम अक्सर रटने पर जोर देता है और रोज की जिंदगी में कितनी अनिश्चितता होती है।
सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि इन आइडियाज को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें?
करियर के लिहाज से देखें तो अगर कोई अपने रास्ते को लेके पक्का नहीं है तो शायद घबराने की जरूरत नहीं है। इसे एक मौका समझें, नई चीजें ट्राई करें, कोई साइड प्रोजेक्ट करें, कोई नया स्किल सीखें, किसी अलग फील्ड का कोई ऑनलाइन कोर्स कर लें।
ये सब सैम्पलिंग हो गया।
हाँ, बिल्कुल। और ध्यान दें कि किस काम में आपको मजा आ रहा है, कौन सी चीज आपको एनर्जी दे रही है, किसमें आप नेचुरली अच्छे हैं, यही आपके मैच क्वालिटी की तरफ इशारा हो सकता है। हो सकता है जो आज भटकाऊ लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए।
और सीखने के मामले में क्या करें?
सिर्फ अपनी फील्ड या सब्जेक्ट तक ही बंद कर ना रहें, अलग अलग विषयों में दिलचस्पी लें, अलग तरह की किताबें पढ़ें, अलग तरह के पॉडकास्ट सुनें, अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलें, बात करें, खुद को थोड़ी वांछनीय कठिनाइयों में डालें, ऐसी चीजें सीखें जो थोड़ी मुश्किल लगती हैं। इससे सोच का दायरा बढ़ेगा, लचीलापन आएगा।
पेरेंटिंग और एजुकेशन में भी तो इसका बहुत रोल हो सकता है।
बिल्कुल, बच्चों पर बहुत जल्दी किसी एक चीज में सुपर स्पेशलिस्ट बनने का प्रेशर डालने के बजाय उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज, खेल, आर्ट, म्यूजिक, जो भी हो, ट्राई करने दें,
उन्हें एक्सप्लोर करने का मौका दें।
हाँ, उन्हें एक्सपेरिमेंट करने दें, फेल होने दें और फिर से कोशिश करने दें। सीखने की प्रोसेस को एंजॉय करना सिखाएं, सिर्फ रिजल्ट या ग्रेड पर फोकस ना करें। सवाल पूछने और कनेक्शन बनाने के लिए एनकरेज करें।
और जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसे, ऑफिस में या घर पर,
तो एक कदम पीछे हटकर सोचें, क्या इस प्रॉब्लम को किसी और एंगल से देखा जा सकता है? क्या किसी दूसरी फील्ड का कोई आइडिया यहाँ काम आ सकता है? किसी ऐसे दोस्त या सहकर्मी से बात करें जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग हो। क्या पता समाधान कहीं ऐसी जगह से निकल आए जहां हमने सोचा भी ना हो।
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि एक घुमावदार रास्ता जिसमें कई मोड़ हों, कई प्रयोग शामिल हों, वो कमजोरी नहीं बल्कि ताकत हो सकता है। मतलब अगर कोई अभी तक अपनी एक चीज या एक जुनून नहीं ढूंढ पाया है तो शायद वो गलत रास्ते पर नहीं है, शायद वो रेंज बना रहा है।
हाँ, बिल्कुल।
और मुझे वो डेलिबरेट एमेच्योर वाला आइडिया भी बड़ा अच्छा लगा। मतलब जानबूझकर नौसिखिया बने रहना, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार, वो शुरुआती उत्सुकता के साथ।
और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा अटकी वो ये है कि धीमी और मुश्किल लगने वाली सीख असल में ज्यादा गहरी और टिकाऊ होती है। आज की जो ये इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन वाली दुनिया है ना, उसमें ये याद रखना बहुत जरूरी है। साथ ही ये समझना कि किसी भी टीम में या समाज में अलग अलग तरह की सोच का होना कॉग्निटिव डाइवर्सिटी कितना जरूरी है। शायद आने वाले अनिश्चित भविष्य के लिए जो सबसे जरूरी स्किल है वो नैरो स्पेशलाइजेशन नहीं बल्कि एडेप्टेबिलिटी है, अनुकूलन क्षमता, और वो रेंज से ही आती है। जटिल दुनिया को समझने और उसमें कामयाब होने के लिए शायद हमें टेडलॉक के फॉक्स की तरह सोचने की जरूरत है, न कि हेजहॉग की तरह। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।